शांति आंगन में बिछी खाट पर लेटी हुई थी। उसके मुख पर प्रसन्नता थी, उसके ओठ मुस्कुरा रहे थे, उसकी आंखों में उल्लास की दीप्ति थी। मन की बोझिलता, आंगन का सूनापन जैसे समाप्त हो गया था। आज उसे सभी कुछ, घर की प्रत्येक वस्तु सुंदर प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क का विचार पक्ष सुंदर सुखद तथ्य बटोरने में मग्न था। आनंदमयी क्षणों का ताना बाना बुन रही थी वह, रह रहकर सोच रही थी, आहा आज इस आंगन का सूनापन समाप्त हो जाएगा, आज शाम को मोहन आएगा, मोहन हमारे लिए सतीश बना आएगा, कितना अच्छा होगा, हमारा जीवन उन्हें शांत सरल बन जाएगा। अक्सर मन में उमड़ने वाला विच्छू का आवेग अब विलुप्त हो जाएगा, उन्हें कभी आकर हमें नहीं तड़ पाएगा, अब मन की उदासी मिट जाएगी। हा तभी मस्तिष्क ने शंकित स्वर में कहा, शांति मोहन चोर है, तुम्हारा सब कुछ लूट ले गया तो। लेकिन यह शंका शांति के मन में उमड़े उत्साह को तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। उसने मस्तिष्क को उत्तर देते हुए कहा, अरे क्या लूट ले जाएगा हमारा, हमारे पास है ही क्या, केवल ममता और स्नेह, लूट ले जाए इन्हें तो अच्छा ही होगा, पुरानी वस्तुओं को तो कुछ समय उपरांत जंग लग ही जाता है, कितने वर्षों से ममता और स्नेह का शेष अंश जो अभी तक हमने सतीश पर लुटाने के लिए रख छोड़ा था व्यर्थ पड़ा है, ले जाए इसे, यह पास रहेगा व्यर्थ जाएगा, हम भी तड़पते रहेंगे उसी भांति जैसे पिछले 13 वर्ष तड़पते रहे, ले जाएगा उसके किसी काम आ जाएगा, हमारे लिए तो व्यर्थनीय बनता जा रहा है, लुटाने के लिए जो उत्पन्न हुआ पास रखकर क्या कुछ मिलेगा, उसे लुटा देंगे, उसने चोरी ना भी किया तो। इन्होंने भी तो यही शंका प्रकट की थी मेरी राय जानने के पूर्व, हाँ बोले थे शांति चोर है, हमें सहारा देने की बजाय तंग करने लगा तो जीवन का सुख चैन लुट जाएगा, तब मैंने यही तो कहा था कि अब कौन सा सुख चैन है, दिन भर सूनेपन में बैठे आंसू बहाते रहते हैं ना, उसके आ जाने पर इन आंखों को कुछ तो शांति मिलेगी, और हमें तंग करके उसे मिलेगा भी क्या, अपनी वर्तमान दिनचर्या से ऊब गया है, तभी तो तुम्हारे पास आया था, वह निश्चय ही हमारे लिए सुखद सिद्ध होगा, हमने कौन सा सदा यही बने रहना है, हमारी गति भी तो होगी अब शीघ्र ही, क्यों ना उसे सहारा देकर कुछ धर्म कमा ले, शायद वह सुधर जाए और उससे हमारा परलोक भी बन जाए, जीवन के अंतिम क्षण आनंदमयी बन जाए। वे भी मेरी बात सुनकर मान गए थे, अब मैं स्वयं क्यों शंकित हो चली हूं, मोहन आएगा, मैं उस पर अपना संपूर्ण विश्वास न्योछावर कर दूंगी, उसे अपना सतीश समझ अपनी ममता अपना स्नेह उस पर लुटा दूंगी, मोहन आएगा, आंगन में खुशी के फूल खिल उठेंगे, घर भर में बहार छा जाएगी, आहा हमारे जीवन में अब नई प्रभात का उदय हो रहा है, उसके आने से पूर्व ही मुझे सब कुछ नया नया सुंदर सुंदर प्रतीत होने लगा है, एकाएक जीवन के सभी मान बदले बदले प्रतीत होने लगे हैं। शांति आज प्रसन्न थी, बहुत दिनों के पश्चात यूं कहें तो अधिक उचित होगा कि बहुत बरसों के बाद उसके मुख पर आज ऐसी आभा शोभित हुई। मन शांत हो, मन प्रसन्न हो, तभी सभी कुछ भला प्रतीत होता है। अस्तित्व का बोझ तिनके के समान लगने लगता है। निराशावाद कहीं दूर जाकर अपना नया निवास खोजने का प्रयत्न करता है। आनंद के उन्माद में लीन व्यक्ति की दशा पूर्णतः समुद्र की भांति हो जाती है, जो अपनी खुशी, अपने उत्साह को प्रकट करने के लिए गर्जता है। उसे अपनी गर्जना सुखद प्रतीत होती है, उसे अपनी गर्जना में शोर नहीं दिखता, जबकि उसकी गर्जना सुनकर हम मनुष्य भयभीत हो जाते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं उसकी असीम शक्ति पर। आज शांति के अस्तित्व की दशा भी समुद्र के समान हो गई थी। वह मारे प्रसन्नता के मन ही मन हुंकारें भर रही थी, और उसकी इस दशा पर घर के दरवाजे, घर की खिड़कियां, सामने की टूटी फूटी दीवार और गली का आवारा कुत्ता, जिसका शांति की उदासी से विशेष संबंध है, सभी आश्चर्यचकित थे उसके मुख पर छाई आभा को देखकर। इस खिड़की, इन दीवारों, दरवाजों और गली के कुत्ते से शांति का बहुत पुराना संबंध है। कुत्ता जब पिल्ला था, तभी से इस गली में रहते शांति ने उसे देखा है। उसे नहीं मालूम कि वह जन्मा कहां। हां, इतना अवश्य जानती है कि वह इस गली में नहीं जन्मा, क्योंकि जब उसे पहली बार शांति ने देखा था, वह अकेला कुंकुं करता गली के कोने में बैठा था। तब और उसके बाद शांति ने कभी उसकी माँ को नहीं देखा। अब वह बूढ़ा हो चुका है, उसके मुंह में केवल दो ही दांत दिखाई देते हैं। अक्सर जब वह हांसता है, तब किसी को काटता नहीं, अनजान आदमी को गली में देखकर भौंकता है, मगर ज्यों ही कोई जोर से पैर पटकता है, डरकर 10 कदम दूर जाकर खड़ा हो जाता है। रात के समय इसे बहुत भौंकने की आदत है, लेकिन धुरे कहने पर बिल्कुल मूक जानवर की भांति कहीं दुबक कर बैठ जाता है। डरता है कि कहीं कोई उसे इस गली से निकाल ना दे, लेकिन गली के सभी निवासी दयालु हैं, कोई भी उसे भगाना पसंद नहीं करेगा। शांति भी अक्सर उसे एकाध रोटी खिला देती है, इसी कारण वह बेझिझक घर में घुस आया करता है। अभी तक नित्य सुबह के समय भीतर आकर अपनी कूड़ेदान व इधर उधर बिखरी वस्तुओं को सूंघने की आदत को नहीं भूल सका, मगर आज शांति को एकाएक इतना प्रसन्न देखकर वह सब कुछ भूलकर उसे ही घूरने लगा, फिर समीप आकर उसके पल्लू को सूंघने लगा। शांति ने उसकी इस हरकत को देखा तो दुत्कार दिया। वह डरकर दरवाजे के निकट ही दुबक कर बैठ गया। शांति पुनः कुछ सोचने लगी। उसकी दृष्टि सामने के दरवाजे पर थी। घर के दो कमरों के दरवाजों से, रसोई घर के दरवाजे से, शौचालय व गुसल खाने के दरवाजे से, बाहर गली के दरवाजे से और कमरे की खिड़की से, घर की सभी दीवारों से तो उसका युवावस्था से ही साथ। साधुराम की ब्याहता के रूप में उसने पहली बार इसी घर में पग रखा। इसी घर के कमरे में उसने अपनी सुहाग रात मनाई थी। इसी घर में सतीश जन्मा था। इसी आंगन में वह घुटनों के बल सरक सरक कर बड़ा हुआ था। इसी आंगन में रहकर शांति ने जीवन की सभी सुखद अनुभूतियों का स्पर्श पाया था। यही उसे जीवन के कटु अनुभवों से परिचय मिला है। उसके जीवन की हर कहानी ये दीवार, ये दरवाजे, ये खिड़कियां सुना सकते हैं। काश उनके भी जुबान होती। घर के इन सभी अंगों से उसका परिचय घनिष्ठ होना स्वाभाविक ही तो है। शांति जब कभी उदास हो जाती, इन्हीं मूक बेजान सृष्टि तत्वों से बातें करने लगती। गली का वातावरण शांत ही रहता, ये भी शांत होते। तब यूं प्रतीत होता था कि सभी उसकी बात बड़ी तन्मयता से सुनते हैं। और आज शांति प्रसन्न थी, अपनी प्रसन्नता को इन्हीं के सम्मुख प्रकट करने का प्रयत्न कर रही थी। और ये अपनी पूर्व दशा जैसे ही खड़े थे, जैसे के जैसे शायद शांति के सुख से उसके दुख से तटस्थ मूक। लेकिन शांति इन्हीं से कह रही थी, पुत्र शब्द ही कितना रसमयी है, बच्चा जन्म लेता है, मां बाप उसी की सेवा में रत हो जाते हैं, वह बालक भी अपनी बाल सुलभ कोमलताओं से अपने मां बाप को प्रसन्न किए रहता है। दुख के दिन पहाड़ जैसे दुर्गम प्रतीत नहीं होते। अब मोहन आएगा तो पुनः हमें अपना जीवन सरल सुखद प्रतीत होने लगेगा। वह नित्य इनके साथ दुकान जाएगा, उसे बहुत प्यार कर विदा किया करूंगा। शाम को लौटा करेगा तो उसे चाय तैयार कर पिलाया करूंगा। फिर रात को अपने पास बिठाकर गरम गरम रोटी। तभी जैसे उसे कुछ और स्मरण हो आया, प्रसन्न हो उठी, कहने लगी, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, सप्ताह भर बाद दिवाली है। दिवाली, अब मोहन आएगा, उसके साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। कितने वर्ष हो गए हंसी खुशी भरी दिवाली मनाई, खुशियों भरी उल्लास भरी दिवाली नहीं आई बहुत वर्षों से इस घर में। लेकिन अब आएगी, हम हंसेंगे, हम गाएंगे मंगल गीत, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम, हम नाचेंगे झूम झूम, राम आएगा ना हमारे घर में, हमारे सूने आंगन में अब बहारें होंगी, घाव भर जाएगा, राम आएगा, राम का नया रूप, सतीश का नया रूप, हमें उसे संवारना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा बनाना है, हमें किसी को फिर से बनाना होगा। शांति खुश हो गई। दिवाली की रात सारे घर को दीपकों से सजाऊंगी, शादी की तरह खूब मिठाई बनाऊंगी, खूब खाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, उस बूढ़े लोहार को भी, हाँ लच्छन को भी, वह भी हमारी तरह अकेला है, हमसे भी अकेला, उसे भी हम अपनी दिवाली में शामिल करेंगे, हम उसे भी अपने घर आने का न्योता देंगे, उसे भी अपने सुख का साथी बना लेंगे, अपनी खुशियों में उसे हिस्सा देकर उसका मन फिर से हरा भरा कर देंगे। हाँ वह भी दुखी है, लेकिन कितना कठोर, लोहे का साथी लोहा, अपने दुख को नहीं बताता, गहरा घाव है इसके मन में भी, हमारे सतीश की तरह इसका बेटा भी इससे दूर हो गया, हमसे भी बुरा हुआ इसके संग, जात बिरादरी से निकाल दिया गया, लेकिन इसे देखो तो हरदम खुश रहता है, अपने काम में मग्न रहता है, भुलाने की चेष्टा में कितना कष्ट देता है अपने अंतर मन को, सभी उफनती भावनाओं को रोके है, अपने आंसुओं को बरसने नहीं देता, बादल पानी के बोझ से लदे हुए हैं इसकी सृष्टि के, कैसा समुद्र है जो गर्जना नहीं करता, कैसा समुद्र है जिसमें अथाह पानी है मगर लहरें नहीं, कैसा समुद्र है जिसमें जीवन है लेकिन स्पंदन नहीं, क्योंकि यह अपना दुख किसी से बांटना नहीं चाहता, दुख से उत्पन्न होने वाली कठोरता की चोट अपने ऊपर ही मारता रहता है। हाँ मैं इसे भी बुलाऊंगी, इसे भी अपनी दुनिया में ले आऊंगी, जो इसने कभी याद नहीं किया उसे दबाकर नहीं रखना होगा, उसका बोझ इसे और नहीं सहना होगा, उन्हें हम सबके जीवन में बिखेर देगा, हल्का हो जाएगा और तब हमारी खुशी में अपनी खुशी पाकर इसे भी जीवन समुद्र सुखद प्रतीत होगा, जैसा औरों को देखकर लगता है। शांति दिन भर ऐसी सुखद कल्पनाएं करती रही। शाम हुई, उसे मंदिर का ध्यान हो आया। उठकर चल दी। घर लौटी तो खाना तैयार करने के लिए रसोई घर में चली आई। खाने के साथ उसने कुछ मीठा बनाने की सोची। उसे बेसन की मिठाई स्मरण हो आई। वह मिठाई बनाने में बहुत निपुण थी। हर कोई उसके हाथ की बनी मिठाई बड़े चाव से खाया करता था। धीमी आंच पर बेसन भूनते हुए शांति सोचने लगी, पहले कितने चाव से बनाया करती थी। सतीश के चले जाने के बाद मन से उत्साह ही मिट गया। कितने वर्ष बीत गए, कभी नहीं बनाई। इन्होंने तो कई बार कहा था, मगर मेरा मन ही न माना, हर बार इंकार कर दिया। सौंदर्य प्रसाधन सुंदर चेहरे पर ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन अब नित्य बनाया करूं, नित्य उसी तरह जैसे सतीश के लिए बनाती थी। वह मना भी करता था, तब भी उसी तरह। तभी शांति को न जाने क्या हुआ, रोने लगी। कितना प्यार करता था पगला, एकदम भूल गया, एकदम। हरदम मामा करता चिपता रहता, घर आता था हॉस्टल से, जब भी दिन भर पास बैठकर अपने किस्से सुनाया करता था। इतना ही प्यार करेगा मोहन, तू तो ना भूल जाएगा हमें, निष्ठुर ना बन जाना, वो तो पत्थर बन गया। भूल गया वे दिन, अपना गृहस्थ इतना अच्छा लगता है कि हमारी गृहस्थी भूल गया, हमें भी अपनी गृहस्थी में शामिल कर लेता। कहां गया आखिर सतीश, उसका अपना पुत्र था। मोहन में उसकी छवि इतनी सरलता से वह नहीं बिठा पा रही थी। कैसे मान लेती एकदम उसे सतीश जैसा, उसके स्थाई भाव जैसे बार बार कहते थे, मोहन तेरा कहां, वह सतीश नहीं बन सकता, तू भी उसे सतीश ना मान सकेगी। सतीश को जीते जी विस्मृत कर देना सरल नहीं, सरल नहीं, मानती हूँ सरल नहीं, लेकिन वह पगला हमें विस्मृत किए है। हम क्या करें, हम और क्या करें। घी गर्म हो गया था, बेसन भूनने लगी। सतीश पुनः उसके मन में आ बैठा था। आ सतीश, ये मिठाई तेरा नाम लेकर ही बना रही हूँ, मोहन में तेरी छवि देखकर। आ भी, तुझे तो ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट लगती थी ना, माँ भी तो तुझे कभी प्रिय थी ना, मिठाई से भी अधिक उसी माँ को तू आज भूल गया। पगले आ, वास्तव में मुझे तेरी ही प्रतीक्षा है, अंतिम सांस तक रहेगी, मोहन तो मात्र एक बहाना है। आजा माँ, तेरी प्यारी माँ प्रतीक्षा रत है, आजा। यही सोचते सोचते शांति का मस्तिष्क स्मृतियों के सागर में तैरता हुआ पीछे की ओर जाने लगा। हाथ से घी और बेसन का मिश्रण हिलाते हुए शांति सागर दर्शन करने लगी, अपनी ममता का, पुत्र के प्यार का रूप देखने लगी। तब यही सोच रही थी कि क्या वैसा ही प्यार मोहन उसे दे पाएगा, और वास्तव में क्या वह भी मोहन को सतीश का स्थान दे पाएगी। वह सुबह से ही शांति के पास बैठा कुछ सोच रहा था। पुत्र को यूं गुमसुम बैठे देखकर बोली, बैठे बैठे उकता गए होगे बेटा, थोड़ा घूम आओ। मन ही नहीं कर रहा माँ। क्यों? शांति ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा, वह उदास था। तब पूछा, क्या बात है सतीश, उदास क्यों हो? छुट्टियां खत्म हो गई मां, धीमे स्वर में सतीश ने उत्तर दिया। अरे हां, मैं तो बीमारी में तुम्हारा भूल ही गई थी। फिर कुछ रुक कर उसने पूछा, पोस्टल कब जा रहे हो? कैसे जाऊं? उसने मां की ओर देखा जैसे विवश हो। शांति को कारण समझ नहीं आया, बोली, क्यों, क्या बाबूजी ने पैसे नहीं दिए? दे चुके हैं। फिर तुम बीमार जो हो? शांति उसकी बात सुनकर हंसने लगी, फिर बोली, अरे मेरे पागल बेटे, बीमार ही तो हूं, मरने तो नहीं लगी, बुखार ही तो है, एक दो दिन में उतर जाएगा, तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो, जल्दी से जाने की तैयारी करो, यह तुम्हारा अंतिम वर्ष है, तुम्हें जमकर मेहनत करनी होगी, पढ़ाई अपनी जगह है और तुम अपनी जगह हो मां। सतीश ने मां के प्रति अपनी भावना प्रकट की, और पढ़ाई जीवन के लिए आवश्यक है, मां नहीं, समझे? अपने शब्द कहने के साथ ही शांति मुस्कुराने लगी। अपने प्रति अपने पुत्र के आंतरिक भाव जानकर वह प्रसन्न हो उठी थी। नहीं मां, मां के बिना जीवन में अंधेरे के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। अपनी मां को ही वह ममत्व दर्शन करा रहा था। उसकी भावुकता का स्वर सुनकर शांति हंसने लगी और बोली, अरे तो क्या सदा तुम मेरी गोद में बैठे रहोगे? इतने बड़े हो गए हो, अब तुम्हें मां की नहीं एक बहू की आवश्यकता है, और सुंदर सुशील बहू के लिए ऊंचे पद की। ऊंचा बनना है तो मन लगाकर पढ़ाई जरूरी है, मां नहीं। चलो अब जल्दी से जाकर जाने की तैयारी करो। शांति के अंतिम वाक्य में आदेश था, लेकिन सतीश तब भी बैठा रहा, कुछ बोला ही नहीं। तब शांति ने पुनः कहा, अब फिर क्या सोचने लगे, चलो स्टेशन जाकर टिकट ले आओ, मैं तुम्हारा सामान ठीक करती हूं। यह कहकर शांति ने बिस्तर से उठने की प्रतिक्रिया की ही थी कि सतीश ने झट से उठकर उसे लिटाने की चेष्टा करते हुए कहा, नहीं मां, तुम अभी बिस्तर से मत उठो, मैं सब कुछ स्वयं कर लूंगा। अरे तुम जा रहे हो, तब भला मैं कैसे लेटी रह सकती हूं, मुझे तुम्हारे लिए मिठाई भी तो बनानी है। मिठाई की आवश्यकता नहीं मां, तुम आराम करो। आवश्यकता क्यों नहीं, क्या खाली हाथ जाओगे? मां के हाथ की बनी मिठाई क्या अच्छी नहीं लगती? शांति ने बनावटी रोष प्रकट करते हुए कहा, बहुत अच्छी लगती है मां, लेकिन तुम मिठाई से अधिक प्रिय हो, पहले ही बीमार हो, मेहनत करोगी तो और कष्ट होगा। तुम क्या समझो मां की ममता को, मां को तो पुत्र की लालना करते सदा आनंद मिलता है, बेशक वह अंतिम सांसें क्यों ना ले रही हो। स्नेहयुक्त स्वर में शांति ने कहा, देखो मां, गलत बात मुख से ना निकालो, वरना मैं, वरना तुम क्या करोगे? शांति ने हंसकर पूछा। वरना मैं नहीं जाऊंगा, सतीश ने बनावटी क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा, फिर मुस्कुराने लगा। शांति भी हंसने लगी। तब सतीश ने पुनः कहा, हां मां, बिस्तर से ना उठना, मुझे कोई मिठाई विठाई की आवश्यकता नहीं। यह कहकर सतीश रेलवे स्टेशन अपनी सीट आरक्षित करवाने चला गया। शांति उसके जाते ही बिस्तर से उठ खड़ी हुई और रसोई घर में आकर मिठाई बनाने लगी। लगभग एक घंटे पश्चात सतीश लौटा। मां को उसने रसोई घर में ही बैठे देखा तो बोला, तुम उठ ही गई ना मां, क्या कर रही हो? शांति ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए मिठाई तैयार की है। ओ मां तुम नहीं मानी, कभी तो कहा मान लिया करो। हां हां मैं तो अपनी मर्जी करती हूं, अरे दिल को चैन भी तो देना होता है ना। अपने मनोभावों का उद्गार करती हुई शांति रसोई घर से निकल आई। सतीश ने उसके दो शब्द दोहराए, दिल को चैन, अर्थ समझा, मुख से अगाध प्रेम युक्त स्वर निकला। मां, मां की ममता का सच्चा रूप पाकर सतीश उससे लिपट गए। हर्ष से उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई। ममता का सच्चा रूप देखकर ऐसा ही होना था। मां पुत्र के हृदय का कंपन है, पुत्र मां के हृदय का कंपन है। दोनों एक दूसरे के मनोभावों का आभास तुरंत पा लेते हैं। पुत्र को दुखी पाकर मां की आंखों से बरबस ही आंसू बह निकलते हैं। पुत्र को प्रसन्न पाकर मां का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता है। मां आखिर मां है, वह जननी है। पुत्र उसे कितना भी तड़पाए लेकिन वह उससे घृणा नहीं कर पाती। पुत्र को कुकर्म करते देखकर मां के मन में उन घृणित कर्मों के प्रति जुगुप्सा समाती है। पुत्र के प्रति तब भी उसके मुख से शुभ कामनाएं निकलती हैं। हर क्षण उसका हृदय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है, हे भगवान मेरा लाल फूले फले, मां की ममता अमर है। पागल सतीश के बालों में अंगुलियां फिराते हुए शांति कहने लगी, अरे मैं मां हूं। मां चाहे औरों के लिए कैसी भी हो, अपनी ममता के प्रति सदैव उसके मन में कोमल भावनाएं रहती हैं। मां अपनी ममता से कभी मुख नहीं मोड़ पाती। बेटा बुखार ने चार ही दिनों में शरीर से सारी शक्ति निचोड़ ली थी, लेकिन आज ममत्व ने मुझ में वही शक्ति संचारित कर दी। उसी की सहायता से मैंने मिठाई तैयार की। चलो अब सामान बांध लो। फिर ममता की पुजारिन शांति ने अपने पुत्र के माथे पर ममत्व भरा चुंबन अंकित किया। सतीश मां के प्रति असीम आदर भाव लिए भीतर जाकर अपना सामान बांधने लगा। विचारशील मस्तिष्क उन्हें वर्तमान में लौट आया। अतीत के इस प्रेममयी चित्र ने शांति की आंखों से आंसू निकाल दिए और इन आंसुओं के कारण वह गंभीर होकर सोच रही थी बार बार वही, मोहन को क्या वह सतीश समझ पाएगी, अपनी ममता उस पर लुटा सकेगी। और कैसा निर्मोही है, हमें भिखारी बना दिया उसकी चाह ने। पुत्र में ऐसा क्या छिपा है कि उसके आगे दुनिया के सारे रिश्ते फीके लगते हैं। तुझे क्या हो गया है सतीश, तेरे प्यार की महक एकाएक कहां लुप्त हो गई। बेसन भुन चुका था, कढ़ाई को स्टोव से उतार कर उसने एक पतीले में चीनी और पानी डालकर स्टोव पर चढ़ा दिया। स्वयं भुने हुए बेसन से उठती सुगंध का पान करती सोचने लगी, स्नेह कितना मधुर होता है, ममता से उसका अटूट नाता है, दोनों मिलकर जीवन को सुगंधित बना देते हैं। बनावट के कारण बनी दीवार ढह जाती है, गलत फहमी कहीं नहीं रहती, लेकिन एकाएक सब कुछ ढह गया मेरा। मैंने क्या किया था, मेरा क्यों कर सब कुछ लुट गया, मेरी ममता क्यों व्यर्थनीय बन गई, क्यों मुझे तू भूल गया सतीश, क्यों मुझे तूने दूसरों की ओर देखने पर विवश कर दिया। पहले तो तू ऐसा ना था, और ममता स्नेह से उठने वाली सुगंध का रसपान करने की चाह, एक और टीस उठाने के लिए उसके मन में मोहन के विषय में और अधिक विचार करने के लिए वह पीछे लौट गई। वह भी सुगंध ही थी, मगर बनावटी, लेकिन प्यार था वहां। तब उन्हें दिल्ली आए 2 ही दिन हुए थे। उस दिन की एक मीठी घटना स्मरण हो आई। सुमिता के शरीर से उठने वाली सुगंध का रहस्य जानने को उत्सुक थी। शाम के समय जब सुमिता भीतर कमरे में तैयार हो रही थी, तो बातों ही बातों में उसने सतीश से पूछ लिया, सतीश, ये सुमिता के बदन से सुगंध क्यों उठती है? माँ का अटपटा प्रश्न सुनकर वह चौंका। क्या माँ? वह आश्चर्यचकित हो उठा। वो सुगंध? माँ की बात का अर्थ समझकर सतीश खिलखिलाकर हंसने लगा। हंसता क्यों है? तभी सुमिता बाहर आई, उत्सुक सी, हंसी का कारण जानने। उसके हाथ में लिपस्टिक थी। सहज भावों से उसने पूछा, क्या हुआ? सुमिता की ओर देखकर हंसते हुए सतीश ने कहा, माँ पूछ रही है तुम्हारे बदन से सुगंध क्यों उठती है। जी? सुमिता को अपनी सास के अज्ञान पर आश्चर्य हुआ। बता दो माँ को, सतीश ने कहा। तब सुमिता भी हंसने लगी। शांति ने अपनी पुत्र वधू के मुख पर अपनी उत्सुक दृष्टि डाली। आइए माँ जी, आपको बताऊं। सुमिता उसे कमरे में ले गई। ड्रेसिंग टेबल से एक शीशी उठाकर उसने शांति को थमा दी और बोली, यह स्प्रे सेंट है माँ जी, इसे मैं अपने बदन पर छिड़क लिया करती हूँ। शांति को अपने अज्ञान पर हंसी आई। वह मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई। सुमिता भी पीछे आ गई। समझ गई माँ? सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ समझ गई। फिर कुछ मिठाई विठाई खिला रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ। यह कहकर शांति रसोई घर की ओर बढ़ गई। तभी उसने सुमिता को सतीश से पूछते सुना, कैसी मिठाई? अरे अभी उस दिन तो खाई थी खन्ना में, भूल गई क्या उसका स्वाद? शांति रसोई घर में आकर मिठाई बनाने लगी। बेसन भूनते हुए उसमें से उठती सुगंध का आनंद लेती हुई सोचने लगी, बहू के बदन से कितनी कृत्रिम सुगंध उठती है, मेरा तो जी मितला गया था। ना जाने कैसे कैसे फैशन चल निकले हैं, भला उस सुगंध लगाने का क्या लाभ? क्या शरीर की सुंदरता बहुत नहीं मर्दों को रिझाने के लिए? मर्द भी इतने मूर्ख की कृत्रिमता के चक्कर में आ जाते हैं। हमने तो कभी ऐसा फैशन ना किया था, सादा जीवन था, लेकिन प्यार तो असीम मिलता था। बेसन कुछ अधिक भुन गया, मिठाई का रंग मटियाला हो गया, मगर स्वाद तब भी नहीं बिगड़ा था। चाय के साथ शांति ने मिठाई परोस दी। सुमिता ने मिठाई का रंग देखा तो नाक चढ़ा ली, लेकिन सतीश बड़े चाव के साथ खाने लगा। सुमिता सिर्फ चाय पी रही थी। शांति ने देखा तो कहा, क्या बात है बेटी, मिठाई लो ना। साथ ही उसने मिठाई की प्लेट सुमिता के सम्मुख रख दी। सुमिता ने उसके हाथ से प्लेट ले ली और पुनः उसे मेज पर रखते हुए कहा, माँ जी मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती? अच्छी तो लगती है माँ जी, मगर इसका क्षण भर के लिए वह रुकी। अपने शब्दों को उसने मन में तोला, तुरंत बात पलट गई, मगर अब मेरा मन नहीं कर रहा। तब सतीश ने कहा, अरे खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट बनी है। वो तो इसका रूप ही बता रहा है, व्यंगपूर्ण मुद्रा में मुस्कुराते हुए सुमिता ने कहा। सतीश उसका अर्थ झट से समझ गया, बोला, क्या कह रही हो सुमिता, जानती हो माँ ने कितने प्यार से बनाई है, आप ही खाइए, मेरा मन नहीं कर रहा। इतना ही कहकर सुमिता ने जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरने शुरू कर दिए। शांति ने अपनी पुत्र वधु के रुख को देखा, समझा तो बोली, कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नमकीन ले आती हूँ। यह कहकर शांति रसोई घर की ओर बढ़ गई। उसका ध्यान भीतर बैठे अपने पुत्र और बहू पर केंद्रित था। उसने सुना सतीश सुमिता से कह रहा था, तुम बहुत मूर्ख हो सुमिता, जानती हो माँ हमसे कितना स्नेह करती है। मैंने कब इनकार किया? सुमिता का स्वर सुनकर शांति सोचने लगी कि वह उच्च घराने की होते हुए भी, सभ्य सुशिक्षित होते हुए भी समझदार नहीं है। उसने परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना नहीं सीखा। शांति और अधिक न सोच सकी। उसका ध्यान उन्हें उनकी बातों पर लग गया। सतीश कह रहा था, जानती हो बचपन से ही मैं माँ के हाथ की बनी मिठाई कितने चाव से खाता रहा हूँ। खाते होगे? सुमिता का स्वर उसके अहम को उजागर कर रहा था। माँ बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाती है। सतीश के स्वर में जोर था। अच्छा, मगर मैं सफाई पसंद हूँ। सुमिता को जैसे मटियाले रंग से चिढ़ थी। नाक भौं सिकोड़ते हुए उसने कहा, इसमें क्या कमी है? कुरूप। उसके शब्द को सुनकर दो क्षण तो सतीश चुप रहा, फिर कुछ सोचकर प्यार से बोला, सुमिता तुमने माँ का दिल दुखाया है। देखो कभी कभी किसी का दिल रखने के लिए अपनी भावनाओं को दबाना भी पड़ जाता है। माँ ने कितने स्नेह से मिठाई बनाई है और तुम उनके हृदय को चोट पहुंचाकर उचित तो नहीं कर रही। प्लीज मिठाई खा लो, बेशक एक टुकड़ा है। और जब शांति नमकीन लेकर आई तो सुमिता ने कहा, माँ जी आप यूं ही नमकीन ले आई, छोड़िए इसे, मैं मिठाई ही खाऊंगी। जब ये कह रहे हैं तो अवश्य ही अच्छी होगी। यह कहकर सुमिता ने मिठाई का टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। शांति पुत्रवधु में आए इस परिवर्तन का कारण समझती थी। मुस्कुराने लगी। उसने सतीश की ओर देखा, वह निरंतर मिठाई खाने में मग्न था। शांति का मन अपने पुत्र के लिए और स्नेहमयी हो उठा। हाँ रे, तूने तो सुमिता से कहा था किसी का दिल रखने के लिए कभी कभी अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है, अब स्वयं ही भूला है। मुझसे तो तेरी कोई बात नहीं हुई, तब मुझसे क्यों रूठ गया रे? अब माँ की भावनाओं का तुझसे कोई संबंध नहीं? कहीं मोहन भी ऐसे ही आकर एकाएक लौट गया तो क्या होगा? तब क्या जीवित रह पाएंगे हम? भावनाओं का रिश्ता बंद गया, फिर तोड़ गया तो क्या करेंगे? तब सतीश याद आएगा, मोहन भी। हे भगवान, तुझे यदि थोड़ा सा भी हमसे प्यार है तो ऐसा ना करना। मोहन दे रहा है, हंस कर लूंगी, उससे प्यार करूंगी, पर सतीश की भांति हमसे छीन ना लेना। नहीं तो हम अपने दुर्भाग्य से मुंह छिपाकर आत्महत्या कर लेंगे। शांति के मस्तिष्क में उथल पुथल मची थी। सुबह जो उत्साह था, अब उसके साथ बहुत सी शंकाएं थी और उनके कारण भय था। मिठाई बन गई तो स्टोव पर दाल की पतीली रख कर आंगन में आकर बैठ गई। साधुराम के आने का समय हो गया था। उसकी आंखों में प्रतीक्षा के लक्षण उभर आए थे।